जीवन के दो मुख्य रूप हैं, एक धर्म जीवन के दो मुख्य रूप हैं, एक धर्म दूसरा आध्यात्मिकता अर्थात आत्मिकता। सामान्यतः हम धर्म को ही सब कुछ समझते, धर्म के संक्षिप्त अर्थ है कि वो साधन, वो रहने सहने विचारने का साधन जिसके द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें, मन को स्वस्थ रख सकें, बुद्धि को स्वस्थ रख सकें एवं व्यवहार में एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हुए कुशलता हो, ऐसा करने से व्यक्ति को सुख और शांति मिलती। ये व्यक्तिगत भी है, सामाजिक भी है। परंतु यही सब कुछ नहीं है। शरीर का सुख या मन का सुख या समाज का सुख, यही जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है कि हम अपने आप को पहचाने, संसार में काय के लिए आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। सभी महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य चोले में ही, केवल मनुष्य चोले में ही व्यक्ति का उद्धार अर्थात उसको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अधिकांश तो अपने आप को पहचानते नहीं, अधिक गिनती उन लोगों की है कि जो अपने प्रति सजग नहीं है। स्वयं उनका कार्य है कि खाना पीना सो लेना और कहना कि ऐश करना मुझे जीवन करो, ऐसा नहीं। कैसे अपने आप को पहचाने, जितने पूर्वज हुए हैं, जितने बुजुर्ग हुए हैं, जितने देवता हुए हैं, संत हुए हैं, सब ने यही कहा है मनुष्य को कि मनुष्य तू अपनी गहरी नींद से उठ, अपने गफलत को छोड़ और अपने आप को पहचान। वही एक साधन है जिससे तुम्हें मोक्ष प्राप्ति होगी, तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे, तुम्हें अपनी अनुभूति होगी। ये भिन्न भिन्न तरीके से कहते हैं, बात एक ही है। कहने में ये बात बड़ी सरल है, परंतु साधना इसकी कठिन है। वास्तव में इस साधना की जो नींव है वो धर्म है। जब तक व्यक्ति का धर्म नहीं बनता है यानी व्यक्ति अपने आप को कुछ नियमों में ढालता नहीं है, जिसको मैंने कल निवेदन किया था यम और नियम, उनके अनुसार अपना जीवन बनाता नहीं है, तो वो इस रास्ते पर सरलता से चल नहीं पाएगा। आजकल हमारी आयु छोट कम है, यम और नियम पालन करने के लिए, इसमें परिपक्वता प्राप्त करने के लिए काफी समय चाहिए। इसके बिना गुजारा भी नहीं फिर तो करें क्या, बहुत समय लगता है। हम जैसे यम है अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, इनको साधने के लिए एक जन्म नहीं कई जन्म लग जाते हैं। कहने में तो ठीक है अहिंसा, किसी के साथ हिंसा नहीं करो, किसी के साथ जुल्म नहीं करो, किसी को सताओ नहीं, किसी का शोषण नहीं करो, परंतु क्या केवल कहने से ही हो जाता है? महात्मा गांधी अहिंसा के प्रतीक, अहिंसा की जीवंत मूर्ति थी, परंतु आप उनकी जीवनी पढ़कर देखिए, उनको कितनी तपस्या करनी पड़ी है केवल एक ही गुण अहिंसा को प्राप्त करने के लिए, तब भी उनको संतोष नहीं हुआ। उन्होंने लिखा है कि जागृत अवस्था में मैं अपने मन पर कंट्रोल कर लेता हूं, मन को वश में कर लेता हूं, परंतु स्वप्न अवस्था में मैं अस्पष्ट रहता हूं और अब भी मुझे अयोग स्वप्न आते हैं, जो प्रतीक है कि मेरा चित्त अभी तक निर्मल नहीं हुआ। तो साधारण व्यक्ति क्या करे? इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं। हमारा लक्ष्य है कि आत्मा का साक्षात्कार करना है, ईश्वर के दर्शन करने हैं, और जैसा ईश्वर का रूप है हमारे में वही रूप है, उसको उसका हमें साक्षात्कार करना है। चाहे एक जन्म लग जाए, दस जन्म लग जाए, हम ऐसा करेंगे, जरूर करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति ने करना है। कोई व्यक्ति एक जन्म में कर लेगा, कोई दो में करेगा, करेंगे सभी, ये ईश्वर का विश्वास है, करेंगे सभी, परंतु समय को कम या बेसी अपनी साधना के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। जो अधिक मेहनत करेगा वो इसी जन्म में ही अपना स्वरूप देख सकता है, और जो कम मेहनत करेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है, विस्तार हो रहा है, आम भी पत्थर आदि से बृहस्पति बने, बृहस्पति के बाद पशु बने, पशु के बाद मनुष्य बने, हम मनुष्य के बाद परमात्मा बनना है आपको, इसको विस्तार कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशन तो हो ही रहा है, विस्तार हो ही रहा है, परंतु उसकी गति को तीव्र करना या धीमी करना ये मनुष्य के हाथ में। आप परमात्मा हैं, पढ़ते उतारने हैं, आवरण उतारने हैं, किसी के जल्दी उतर जाएंगे, किसी के देर के बाद उतरेंगे, उतरेंगे सबके। ये परमात्मा ने और परमात्मा के बंधुओं ने हमें विश्वास दे रखा है कि आपको अनुभूति होगी, अवश्य होगी, परंतु गति को तीव्र करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य है कि वो कुछ विशेष साधन करे। क्योंकि बिना आत्मा के साक्षात्कार किए हुए, परमात्मा के दर्शन किए हुए, किसी को सुख शांति आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रत्येक व्यक्ति भीतर से चंचल है, दुखी है, सब कुछ होते हुए शरीर भी है, शरीर स्वस्थ भी है, पैसा भी है, संतान भी है, विद्या ग्रहण भी की है, तब भी व्यक्ति दुखी है। उसका कारण यही है कि मन आत्मा को छोड़कर, परमात्मा को छोड़कर माया में फंसा हुआ है। इस सुख दुख तो अपेक्षित है, इनका प्रभाव हम पड़ता है इसलिए कि हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, आत्मा को भूले हुए हैं, मन पर ही टिके हुए हैं, शरीर पर ही टिके हुए हैं। जिस समय हम अपने स्वरूप को शरीर और मन से हटा लेंगे, हम प्रभु के चरणों में लगा देंगे, अपने लय कर लेंगे, तब संसार में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उसका हमें अनुभव नहीं रहेगा। हम तो उस महान आनंद के सागर के प्रवाह में तैरेंगे, कोई हमें दुख नहीं लगेगा, कोई सुख नहीं लगेगा, एक आत्मा की अनुभूति निरंतर होती रहेगी। जैसे भगवान शिव के स्वरूप को आप देखते हैं तस्वीरों में, वैसे ही आपका कभी रूप है, आनंद का रूप आपका है ही, परंतु इस मन ने उस आनंद पर पर्दे डाल रखे, इस अहंकार ने उस आनंद पर पर्दे डाल रखे। ये को किससे कहानियां नहीं है, ये वास्तवता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास ये धन है, छिपा हुआ है, मन ने ही छिपा रखा है। बड़ी विचित्र लीला है भगवान की कि हमें ये मन दिया है और इस मन ने ही परमात्मा को आत्मा को छिपा रखा है। तो मन को साधने के दो मुख्य साधन हैं, एक तो प्रेम का है, भक्ति का है, दूसरा ज्ञान का है। वैसे तो सैकड़ों पद्धतियां हैं, परंतु मुख्य रूप मुख्य साधन यही है, शेष भी है, वो इन दो साधनों के विस्तार है, एक प्रेम का है, एक ज्ञान का है। शुरू शुरू में दोनों में भिन्नता दिखती है, आगे चलकर जब सफलता आती है तो दोनों एक ही हो जाते हैं, ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं रहता है। प्रत्येक व्यक्ति की संस्कार परिणाम स्वरूप पृथक पृथक वृत्ति होती है, स्वभाव होता है, वो स्वभाव के परिणाम स्वरूप वो अपना रास्ता इख्तियार करता है, अपनाता है। जिसके संस्कार भक्ति की ओर है, प्रेम की ओर है, उसको प्रेम और भक्ति अच्छी लगती है, वो उसी रास्ते को अपनाकर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। जिनकी वृत्ति ज्ञान की होती है, बुद्धि की तरफ होती है, वो ज्ञान साधना करते हैं। कि कोई संघर्ष नहीं है कि ज्ञान अच्छा है, भक्ति कम है, भक्ति बड़ी है, ज्ञान छोटा है, ये सब मन की बातें हैं। परमात्मा के आयाम में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, परमात्मा का मुख्य गुण ही है एकता, वहां द्वैत है ही नहीं, दूसरा अपने है ही नहीं। साधन पूर्ण नहीं होता है, आप शिखर पर नहीं पहुंचते हैं तब तक ही एक पृथकता है, अलगी है, एक दूसरे को हम अलग-अलग समझते हैं। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाती है, दो रहते नहीं, ईश्वर है, बस प्रेम है, आनंद है, एक प्रवाह आनंद का बह रहा है, प्रेम का प्रवाह बह रहा है। तो जो भी साधन आपको अच्छा लगे उसको अपनाना चाहिए। हमारे यहां दोनों साधनों को अपनाते हैं, प्रेम को भी और ज्ञान को भी। भजन आदि पढ़ते हैं, ये प्रेम प्रेम के साधन के रूप में, और जो आंख बंद करके बैठते हैं ये ज्ञान साधन। इस भीतर की साधना में मन जितना अधिक स्थिर होगा, जितना ये अधिक मौन होगा, शरीर भी मौन, मन भी मौन, बुद्धि भी मौन, जितना मौन कर्ण मौन होगा, उतना ही आप ईश्वर के समीप। जो लोग पढ़े लिखे हैं, विज्ञान के विद्यार्थी हैं, वो समझ सकते हैं कि मन की चंचलता जब खत्म होती है तो कॉस्मस एनर्जी, विश्व शक्ति जो है, हमारा संबंध उस विश्व शक्ति के साथ हो जाता है। परमात्मा उस विश्व शक्ति से भी अधिक सूक्ष्म है, और जैसे जैसे मनुष्य सूक्ष्म होता चला जाता है, हम भी सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अंत में एक ऐसा क्षण आ जाता है कि जब हम स्वयं ही अति सूक्ष्म होकर, अर्थात आत्मिक रूप होकर परमात्मा में लय हो जाते हैं। ये ऐसी बातें नहीं है कि जो साधारण व्यक्ति समझ न सके, केवल प्रयास करने की जरूरत है। बहुत सरल रास्ता है, परंतु हमने इसको बहुत कठिन बना दिया है, जटिल बना दिया है। हजारों संप्रदाय उत्पन्न हो गए हैं, सैकड़ों ही संप्रदाय उत्पन्न हो गए हैं, सैकड़ों ही रूप हैं, संसार इन रूपों में और संप्रदायों में फंस सकता है। परमात्मा के आयाम में कोई रूप नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, एकता ही है। जहां अनेकता है वहां दुख है, जहां एकता है वहां सुख है। शांति है आनंद, अनेकता में सुख नहीं आएगा। हाँ, एक दफा एक बार एकता से होकर पुनः अनेकता में आए तब तो वो व्यक्ति स्वयं प्रेम रूप होकर प्रेम गंगा में स्नान करके दूसरों को भी गंगा की प्रसादी दे सकता है, वो ऐसा तो कर सकता है। परंतु अनेकता में कभी भी आत्मा का सुख नहीं मिल सकता है। व्यक्ति को एकता के रूप में आना ही हो। परमात्मा ने हमारे पर बड़ी कृपा की है और हमें बता दिया है कि वो रूप किस प्रकार का होता है। प्रत्येक व्यक्ति रात को सोता है, यदि परमात्मा हमें नींद प्रदान नहीं करता तो हम लोग पागल हो जाते हैं। नींद से एक तो हमें आराम मिलता है, जो शक्ति हमने खोई होती है जागृत अवस्था में वो हमें पुनः मिल जाती है। कितनी कृपा है परमात्मा की। और सबसे विशेष जो उपहार हमें मिलता है वो परमात्मा हमें बताता है कि साधना में आपकी स्थिति गाढ़ निद्रा जैसी होती है ऐसी शुरू हो जानी चाहिए। इसको सुषुप्ति कहते हैं, जहां किसी प्रकार का विचार नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, किसी प्रकार का तनाव नहीं है, आराम है, शरीर को भी आराम है, मन को भी आराम है, बुद्धि को भी आराम है। ऐसी स्थिति से जागृत अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को गुजरना होगा। सुषुप्ति में प्रत्येक व्यक्ति को जाना होगा, चाहे भक्ति का साधन करें चाहे ज्ञान का साधन। तत्पश्चात तुरीय अवस्था आएगी। एक महापुरुष ने तुरिया का वर्णन इस प्रकार किया है, व्यक्ति सफर करता करता सागर के किनारे पहुंच गया है। एक तरफ धरती है, दूसरी ओर अथाह सागर है, पानी है, जल है। वो किनारे पर पहुंच गया है। अब उसको हिम्मत चाहिए, ईश्वर कृपा चाहिए, किसी महापुरुष की कृपा चाहिए कि वो जल रूप होकर उस जल में प्रवेश कर जाए और वही उसी जल में समा जाए। वो तुरिया अतीत अवस्था है। अधिकांश लोग सुषुप्ति तक ही रह जाते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं तो वो किनारे तक पहुंच जाते हैं, यानी जहां सीमा होती है, वो छलांग लगा नहीं सकते सागर में। हम सबकी यही हालत है, उस किनारे तक तो पहुंचे नहीं, पहले इधर इधर खड़े हैं, धरती पर ही खड़े हैं। मनुष्य ने परमात्मा रूप सागर में छलांग लगानी, क्या तो कोई संत आए हाथ पकड़ के परमात्मा के चरणों में ले जाए, या हमारे भाग्य अच्छे हो, या हमारी साधना अच्छी हो, या ईश्वर की कृपा हो जाए किसी तरह, उस तुरिया अतीत अवस्था में जाना है, फिर सहजता में आना है, सहज अवस्था में है, सागर में मिले भी हैं और सागर से अलग भी हैं। ये संतों की अवस्था होती है। कबीर साहब कहते हैं, साधो सहज समाधि भाई, मुझे आंख बंद करने की जरूरत नहीं, कान उठाने की जरूरत नहीं, मुझे कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। वो तुरिया अतीत से गुजर के सहज अवस्था में आ गए हैं, व्यवहार कर रहे हैं तो परमात्मा से तद्रूप है। भीतर में परमात्मा के रूप और परमात्मा के गुण से रंगे हुए हैं, समरस हैं, उनका रोम रोम ईश्वरमय है। ये जो होली खेली जाती है, या जो कल आप ज्ञान की होली खेलेंगे, सरस्वती जी की पूजा करेंगे, वो यही है। जैसे भाई सब अभी पढ़ रहे थे, रंग ले अपने रंग में, यानी हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि हमें अपना जैसा ही बना ले। कहने से कुछ नहीं होगा, उस सागर के कोने पे जाकर पहले तुरी अवस्था पर अपनी हिम्मत से कर जाना ही पड़ेगा, सब कुछ जाना पड़ेगा, उस किनारे जाके खड़े हो जाए, इतना तो सबको करना ही है। ये धर्म की अवस्था है, ये नियम है, इतना तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना ही होगा, पुरुषार्थ करना ही होगा। वहां जाके ईश्वर कृपा या संत की कृपा या गुरु कृपा या अपने संस्कारों की कृपा होगी, तब हम उस रंग में रंगे जाएंगे। अधिकारी तो आपको बनना ही पड़ेगा, प्रयास करना ही पड़ेगा। तो हमारा लक्ष्य सहज अवस्था, सहज समाधि, प्रभु में एक भी है और प्रभु से अलग भी। ये गोपियों का प्रेम है, कभी तो भगवान के हृदय में समा जाती हैं और कभी संसार में आकर रासलीला करती हैं भगवान से, संसार को प्रेरणा देने के लिए कि ईश्वर प्रेम कैसा होता है। उस लीला में भगवान प्रत्येक गोपी के साथ दिखाई देते हैं। भगवान किसी को नहीं, प्रत्येक प्रेमी के हृदय में समाये हुए हैं। कलाकार ने जो तस्वीर बनाई बड़े सुंदर बनाए, ईश्वर का स्वरूप बताया। भगवान कृष्ण तो प्रत्येक गोपी के साथ रासलीला कर रहे हैं। एक भगवान कृष्ण है परंतु वो सब गोपियों के साथ, गोपियों का अर्थ है ईश्वर प्रेम, स्त्री नहीं है, स्त्री में प्रेम अधिक होता है, इसलिए सब प्रेमियों को गोपी कहना कहते हैं। जो भी ईश्वर से प्रेम करता है वो प्रभु की गोपिका है, वही हमारा पति है, वही हमारा पिता है, वही सब कुछ है। तो संक्षिप्त में पुनः निवेदन कर दूं कि धर्म की नींव को पुख्ता बनाइए, साथ साथ ईश्वर से प्रेम करें। इसमें दोनों आ जाएंगे, भक्ति भी आ जाएगी और ज्ञान भी आ जाएगी। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि सैकड़ों शास्त्रों को पढ़ना है, ज्ञान का अर्थ ये है समझना है, मैं शरीर नहीं हूं, प्राण नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, आनंद नहीं, मैं आत्मा हूं, ये शाब्दिक न हो, कुछ कुछ अनुभूति भी हो, साधना करके ये अनुभव भी कर सके। बिना साधना के अनुभूति नहीं होती और बिना अनुभूति के स्थिरता नहीं आती, चाहे 1% अनुभूति हो, पूर्ण अनुभूति न हो, कुछ ना कुछ आनंद आना चाहिए, कुछ ना कुछ शांति आनी चाहिए, तभी तो आपको प्रेरणा मिलेगी दूसरा कदम आगे बढ़ाने के लिए। नहीं तो आप कहेंगे ये तो सब ऐसा ही है, लोग भांग पिए हुए हैं, ऐसी बातें करते हैं, इसमें कोई सार तो है। प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव करना चाहिए कि आत्मा है, परमात्मा है, चाहे वो पूर्ण अनुभव हो, कुछ ना कुछ प्रत्येक व्यक्ति को होता है। और अभी मैं निवेदन कर रहा था, नींद गांठ निद्रा में सबको अनुभव होता, वही स्थिति हमारी साधना में होनी चाहिए। गांठ निद्रा में क्या होता है, मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है, शरीर बिल्कुल ढीला होता है। साधना करते वक्त यही हमें करना है कि मन हमारा स्थिर रहे, शरीर हमारा ढीला रहे, बुद्धि का कोई तर्क नहीं है, बस। जब ये आप स्थिति कर लेंगे तो आपका मन लगेगा, आपको आत्मा की अनुभूति होगी, आपको ज्ञान की, प्रेम की अनुभूति होगी। प्रेम और ज्ञान कोई अलग अलग नहीं है, दोनों परमात्मा के एक ही, दोनों ही नाम है परमात्मा के। मगर ये कठिन होता है, जागृत अवस्था में मन इतना चंचल होता है कि हम इसको स्थिर नहीं कर पाते। हमारा शरीर भी 10 मिनट बैठे तो थक जाता है, रात को नींद में 6 घंटे 7 घंटे आराम से बड़े ढीला होकर लेटा रहता है, परंतु जागृत अवस्था में कभी हाथ पांव इधर कभी उधर, तो मन की चंचलता के कारण ऐसा होता है। तो करना यही है, जो हालत सुषुप्ति में गाढ़ निद्रा में व्यक्ति को होती है, साधना में जब बैठते हैं वही स्थिति हमारी होनी चाहिए। महर्षि रमण के पास जो भी जाता था व्यक्ति, वो कहता था, लोग कहते थे कि ईश्वर के दर्शन कैसे करें, और वो यही बताते थे और अपने जीवन में उन्होंने जैसे ईश्वर की अनुभूति की वो बतलाया करते थे। बालक थे 15-16 साल के, एक मृतक को ले जा रहे थे लोग शमशान भूमि में, तो इनके मन में ख्याल आया, पहले तो कुछ घबराए डरे भी, परंतु बाद में इनको ख्याल आया ईश्वर की कृपा होनी थी कि मृतक की क्या अवस्था होती। बच्चों में बड़ी उत्सुकता होती जानने की, प्रत्येक बात को वो बड़ी उत्सुकता से समझने की कोशिश करते हैं। कई बार बच्चे माता पिता से प्रश्न करते हैं तो माता पिता कुछ रुष्ट हो जाते हैं, क्यों बार बार प्रश्न किए जा रहे, परंतु उनके हृदय में सच्चाई की खोज की उत्सुकता होती। तो उस बालक के हृदय में ये उत्सुकता उत्पन्न हुई कि मृतक की क्या अवस्था क्या होती। तो बालक और बंदर में भिन्नता नहीं होती है, एक ही स्वभाव होता है, नकल करते हैं बच्चे। तो उसको ख्याल तो था कि मृतक की क्या स्थिति होती है, तो उसको ख्याल को लेकर आप मृतक बनकर लेट गए। तो मृतक व्यक्ति हाथ पांव नहीं हिला सकता, उसके संकल्प विकल्प बंद हो जाते हैं और उसका शरीर हिलता जुलता नहीं। वो सुषुप्ति की अवस्था होती है, जागृत की जीवित अवस्था में सुषुप्ति होती है, उसमें प्राण चल रहे होते हैं, मन नहीं चलता है। मृतक शरीर में प्राण भी खत्म हो जाते हैं और मन की गति भी खत्म, इतना ही अंतर, परंतु है वही सुषुप्ति की अवस्था है। तो जब सुषुप्त अवस्था होती है तो आत्म अनुभूति होने लगती है, तो आपको ईश्वर की अनुभूति हुई है। उस दर्शन से आप इतना प्रभावित हुए हैं कि आप घर से भागकर सब कुछ त्याग कर ईश्वर की साधना में लगे। उनकी साधना की था और यही अंतिम चरण, शुरू में यही किया और अंत श्वास छोड़ने तक यही साधना। श्वास की गति जो है बिल्कुल कुंभ की तरह है, स्थिर है, कोई विचार नहीं, कोई शरीर नहीं। जब ऐसी अवस्था हो जाती है आप और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रहता। तो इस स्थिति को उत्पन्न करने के लिए, इस स्थिति में प्रवेश होने के लिए आवश्यक है कि हम मन की चंचलता को त्यागें, कम बोले। जैसे मैंने कल निवेदन किया था, जितना कम बोलेंगे बाहर से उतना ही भीतर की आवाज भी धीरे धीरे कम होते चले जाए, आपके विचार कम होते चले जाएंगे। थी और कम बोलने के लिए कम भोजन करना चाहिए, और भोजन भी इस प्रकार का हो, सात्विक हो। तामसिक और राजसिक भोजन करने वाला व्यक्ति चंचल होता है और अधिक बोलता है, सात्विक भोजन करने वाला व्यक्ति शांत होता है। ये जो हम सप्ताह में महीने में एक बार व्रत रखते हैं वो इसलिए करते हैं कि हम ईश्वर की याद में सात्विक भोजन करें, कम बोलें तो कम व्यवहार करें। व्रत का बड़ा महत्व है, परंतु हम खाने पीने में मस्त रहते हैं, व्रत वाले दिन और अधिक खाते हैं, ऐसा नहीं। व्रत का मतलब है एक प्रकार की शब्द लेना, मैं कम बोलूंगा, सात्विक भोजन करूंगा, सेवन करूंगा, शुद्ध व्यवहार करूंगा, और अधिक अधिक समय ईश्वर की पूजा में या ईश्वर के ध्यान में रहूंगा। यदि व्यक्ति इस प्रकार व्रत रखता है तो उसको काफी लाभ हो सकता है। तो कोशिश करें कि मन की चंचलता को खत्म करें, कम बोले, कम से कम। ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर होने लगता है। वैसे तो सैकड़ों ही पद्धति हैं मन को शांत करने के लिए, जैसे प्राणायाम की साधना है, योग की साधना है, महात्मा बुद्ध की साधना है, भक्ति की साधना है, ज्ञान की साधना है, श्रेयस विवेक और वैराग्य की साधना है, कई साधन हैं जिससे मन की गति को धीमी कर सकते हैं। तो जो भी साधन आपको उपयोगी हो उसको अपनाएं, क्योंकि बिना चंचलता के त्याग किए हुए आप आत्मा के समीप नहीं पहुंचेंगे। जो किनारा मैंने आपको बोला है तट सागर और धरती के बीच में जो विभाजन लाइन है जिसको तट बोलते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम हमारे मन स्थिरता होनी चाहिए। स्थिरता में बड़ी शक्ति है। प्रभु के चरणों में ले जाने के लिए भी स्थिरता में शक्ति है, एवं आपके स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, आपको मानसिक शांति देने के लिए एक बड़ा उपयोगी साधन है। इसके अतिरिक्त संसार के जितने काम करेंगे, आप व्यवहार करेंगे, यदि आपके मन में स्थिरता है तो आपको व्यवहार में सफलता मिलेगी। स्थिरता में ये विशेष प्रभु की शक्ति भीतर में से मिलती है। अब थोड़ी देर के लिए विराम होगा, एक घंटे के लिए, आप सब लोग शायद इससे फारिग हो गए।